لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہرگز ان کو آر نہیں ہے اس کے اندر، ان کو شرم نہیں آتی بالکل، ان کو وہ مائنڈ نہیں کرتے اس میں کہ ان یکونا عبد اللہ، کہ وہ ہوئے اللہ کے بندے. یعنی انہوں نے اس کا خود کنفیس کیا ہے. دیکھیں میں نے جو آپ کو آیت سنائی ہے ابھی سورہ مائدہ کی، تو اس میں کیا انہوں نے کیا فرمایا، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی ان کو یہ نہیں تھا کہ مثال کے طور پہ، اب وہ کتنی بڑی بات ہے جو وہ معجزے دکھاتے تھے، مثلا مردہ کو زندہ کرنا، کوڑی کو صحیح کر دینا، اندھے کو بینا کر دینا، لوگوں کے گھروں میں جو وہ کھانا رکھ کے آئے ہیں بتا دینا بھئی تم یہ گھر میں رکھ کے آئے. ایسے انسان کو تو لوگ سمجھ کے کتنی اس کی تعریفیں کریں، آپ تو کیا ہیں، آپ تو یہ بڑی چیز، آپ تو فلاں. دیکھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا لوگ میری تعریفیں کرتے رہے، چلو کرتے ہیں تو کرتے رہے، اچھا ہے. جیسے کچھ لوگ اپنی تعریفیں خود کرواتے ہیں، ان کو اچھا لگتا، کبھی کسی کو منع نہیں کرتے کہ نہ آپ دیکھیں ایسے نہ کہیں، سب تعریف اللہ کے لیے. وہ کہتے ہیں اچھا کرتے رہے، ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے اس میں. وہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے، ان کو کوئی شرم نہیں تھی اس کے اندر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں. غلام دیکھیں یہ کیسی بات ہے کہ ایک انسان کا غلام ہونے میں آر ہے، بے شک ہے، لیکن اللہ کے غلام ہونے کے اندر انسان کے لیے بلندی ہے. تو وہ یہ نہیں اس میں شرم محسوس کرتے تھے کہ میں تو خود اتنی بڑی چیز ہوں، میں کیوں کسی کا غلام بنوں، میں تو خود اب زندہ کرنے لگ گیا ہوں مردوں کو. نہیں، تو اللہ کا عبد ہونا اس میں ان کو کبھی کوئی آر محسوس نہیں ہوئی، انہوں نے اس کو مائنڈ نہیں کیا، اس کو حقیر نہیں سمجھا. کہ آپ کس چیز کو حقیر سمجھتے ہیں، آر کب آپ سمجھتے ہیں، جب آپ یہ سوچتے ہو کہ میں خود اتنی بڑی چیز ہوں. اچھا کوئی آپ کو کہے کہ آپ میری نوکر ہیں، تو وہ آپ کہیں کہ تم کون ہوتی ہو مجھے کہنے والی، یعنی میں خود اتنی بڑی چیز ہوں، میں تمہاری نوکر ہوں، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. آپ اپنی شان کے لائق نہیں اس کو سمجھتے نا. اللہ تعالی کے غلام ہونے میں انسان کی شان ہے، اور اس میں پیغمبروں کو بھی کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں اور سوچیں کہ ہم کیوں اللہ کے غلامی میں آئے. یہ تو جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہی ہوئے تھے اور گود میں انہوں نے کلام کیا تھا، اس وقت انہوں نے کہا تھا انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں. وللملائکۃ المقربون، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ملائکہ کو بھی کوئی اس کے اندر آر نہیں ہے. وہ ملائکہ دیکھیں، ایک تو ملائکہ کے سب کے سٹیٹس ایک سے نہیں ہے نا، کچھ ملائکہ جو مقربون ہیں، مقرب ہیں، اللہ کے نزدیک اس کے بہت قریب ہیں. ان میں کون ہے؟ عرش کو اٹھانے والے جبرائیل علیہ السلام، سارے فرشتوں کے سردار ہیں. عرش کو اٹھانے والے اللہ سے کتنے قریب ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کوئی کبھی گناہ کا تو دور دور تک ان سے کوئی امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی زندگی کیا ہے؟ تسبیح کرنا. جتنے بھی ملائکہ ہیں نا، جیسے ہماری سانس چلتی ہے نا، اس طرح ان کی تسبیح چلتی ہے، ہر وقت وہ تسبیح کر، چاہے کوئی بارش کا فرشتہ ہے، چاہے کوئی موت کا فرشتہ ہے، چاہے کوئی اور کوئی رزق پہنچانے کا فرشتہ ہے، کوئی طرح کے بھی فرشتے ہیں، ان سب کی ایسے تسبیح چلتی ہے جیسے ہماری سانس چلتی ہے. ٹھیک ہے، یہ فرشتوں کے بارے. اور جو مقرب فرشتے ہیں اللہ کے قریب، ان کا تو کتنا بڑا مقام ہوگا، وہ کتنے بڑے ہیں اور کتنے سٹرونگ ہیں، جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، وہ کتنے بڑے فرشتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو ان کی کان کی لو سے لے کے تو ان کے کندھے تک کا ہی فاصلہ 500 سال تک کا ہے، مسافت کا ہے، اور ایک آسمان دوسرے آسمان سے 500 سال کی مسافت پہ ہے. تو سوچیں کہ اتنے بڑے وہ فرشتے، ان کو بھی کوئی شرم نہیں ہے اس میں کہ وہ سوچیں کہ ہم اللہ کے غلام بن جائیں، ان کو نہیں ہے اس میں شرم. دیکھیں غلام کیسا ہوتا ہے بتائیں، غلام آزاد ہوتا ہے؟ نہیں، آزادی کا ہی تو اپوزٹ ہے غلام ہونا، تو غلام تو بندی بھی زندگی کا نام ہے. اتنے بڑے بڑے سوچیں، اتنے بڑے جلیل و قدر پیغمبر ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی نہیں شرم ہے غلام ہونے میں اللہ کی. اچھا مقرب فرشتوں کو بھی نہیں شرم ہے اللہ کے غلام ہونے میں. لیکن میرا آپ سے سوال ہے، آپ کو تو نہیں کہیں شرم آتی اللہ کے غلام ہونے میں؟ سوچ سمجھ کے بتانا مجھے، شرم تو نہیں آتی کہیں؟ آپ کہہ رہے ہوں گے نہیں ہمیں تو بالکل نہیں شرم آتی، ہم تو بالکل اس کو مائنڈ نہیں کرتے. लेकिन आपको कुछ याद दिलाऊं? क्या बात होती है कि जब हम किसी ऐसी मजलिस में जाते हैं जो बड़ी फैशनेबल लोगों की है, तो हिजाब लेने में हमें बड़ी शर्म आती है, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, ये अल्लाह की गुलाम है, तो अल्लाह की गुलाम नजर आने में मैं कितनी बुरी लगूंगी, है ना? याद आया? शैतान की गुलाम होने में मैं अप टू डेट लगूंगी, अल्लाह की गुलाम होने में बड़ी शर्म आएगी, क्या कहेंगे लोग। और हेलो हाय करना, जब कोई ज्यादा कोई पर्सनैलिटी वाले लोग हों, कोई बड़े बड़े लोग हों, तो हेलो हाय करना वो ज्यादा सही है। ये क्या अस्सलाम वालेकुम, तो क्या कहेंगे वो, मुझे तो बड़ी शर्म आती है इस तरह कहते हुए। तो अल्लाह की आमत, आप तो अमतुल्ला है ना, अब्दुल्ला तो आदमी होता है, अल्लाह की बंदी बनने में आपको शर्म आई ना? फिर आदमियों को शर्म आती है दाढ़ी रखने में, टखने से ऊपर पैंट्स करने में, नबी अलैहिस्सलाम को तो नहीं शर्म आती थी, आपके सहाबा को भी नहीं आती थी। उस जमाने में भी बादशाहों के इतने लंबे लंबे लिबास होते थे, पीछे पीछे घिसटते आते थे, लेकिन आपने टखनों को नंगा किया कि नहीं, ये तकब्बुर की निशानी है। तो उनको अल्लाह के बंदे नजर आने में कोई शर्म नहीं आई, लेकिन आज आदमियों को शर्म आती है। और भी बहुत सारी जगह देख ले जहां जहां हमें अल्लाह की बंदी नजर आने में, दिखने में, लगने में शर्म आती है, बहुत ज्यादा शर्म आती है। ये लोग क्या सोचेंगे, मुल्लानी है। मुल्लानी क्या है? अल्लाह की बंदी, ये कहलाने में भी मुझे शर्म आती है। ईसा अलैहि सलाम को तो नहीं शर्म आई, मुकर्रर फरिश्तों को भी नहीं शर्म आई, हमें शर्म आती है। जितनी शैतानी कामों से करीब काम है, उनमें हमें फख्र महसूस होता है। जो शैतानी काम है ना, उनको करने में फख्र महसूस होता है। जो अल्लाह के बंदों वाले काम है, उनको करने में शर्म आती है। अब आप खुद ही बता दें कहां कहां शर्म आती है, और जगह सोचे। वो तो कोई हस्तियां थी, इतनी पाक, इतनी बड़ी हस्तियां, चाहे वो पैगंबर हैं, चाहे वो मुकर्रब फरिश्ते हैं, इनसे ज्यादा पाक हस्तियां कोई नहीं है। गुनाहों से दूर, तब भी उन्होंने अपने आप को इतनी बड़ी चीजें नहीं समझा कि हम तो अब्दुल्ला नहीं है, हम तो अल्लाह के बंदे नहीं है, लेकिन हम कोई चीज भी नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। गुनाह हमारे, यानी ओढ़ना बिछोना है, तब भी हमारा हाल क्या है कि तकब्बुर इतना है, इतनी अपने आप को बड़ी चीज समझती है कि अल्लाह की बंदी बनने में हमें शर्म महसूस होती है। इतनी बड़ी चीज है, हम नीचे हो जाएंगे क्या अल्लाह के बंदे बनने से, या बुलंद होंगे? मैंने तो अभी आपको बताया कि अल्लाह की गुलामी में तो बुलंदी है, इंसानों की गुलामी में रुसवाई है। हम इंसानों के गुलाम बनने में बुलंदी महसूस करते हैं कि वो मुझे देख के खुश हो जाएंगे ना, तो गुलामी तो उसकी की ना फिर आपने। एक महफिल में जाऊंगी, लोगों की नजरें मेरे पर पड़ेंगी, लोगों को बड़ा मैं खूबसूरत नजर आऊंगी, मैं अच्छी लगूंगी लोगों की नजरों में, तो आपने तो उन लोगों की गुलामी कर ली ना फिर। आप तो उनकी खुशी की गुलाम है बेसिकली, कि वो मुझे कैसा देखते हैं, अल्लाह की गुलामी तो ना की। सब इस आईने में अपने आप को जरा रख के देखिएगा और सोचिएगा कहाँ कहाँ मुझे अल्लाह की बंदी बनने में आर महसूस होती है, अपनी शान के लायक नहीं लगता, हकीर लगता है मुझे अपना आप। अल्लाह अकबर। व मई यस्तन के अन इबादत ही व यस्तकबिर। और जो कोई आर समझेगा ना, इससे बेजार होगा, इसको अपने लिए शान के लायक नहीं समझेगा, हकीर समझेगा, माइंड करेगा इसको, अल्लाह की इबादत को, वह यस तकबीर और तकबर करेगा, क्योंकि ये चीज आती तब है जब इंसान के अंदर तकबर होता है कि मैं बड़ी चीज हूं और मैं कहीं नीचे ना झुक जाऊं, मैं कहीं छोटा ना हो जाऊं। फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ, तो अनकरीब वो इकट्ठा करेगा उनको अपनी तरफ सब के सबको। तो इसमें क्या बड़ी बात है, मतलब यह है कि जमा करेगा उनको अजाब के लिए, उनको सजा के लिए, ठीक है। तो तकब्बुर उसके अंदर है और उसके अंदर अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की इबादत क्या होती है पहले भी बताया था, अल्लाह की इबादत में है ही अपने आप को झुका देना, अपने आप को जलील कर देना, नीचा कर देना। तो जो इस चीज में आर महसूस करता है ना, लोगों के आगे तो झुकते हैं, चलो फिजिकली नहीं झुक रहे लेकिन उनकी जो डिमांड्स हैं उनके आगे तो झुकते हैं ना। आज की डिमांड क्या है, आज के ट्रेंड्स क्या हैं, आज डिमांड ये है कि औरतें जो हैं वो बेहिजाब फिरे, बेहयाई के कपड़े पहने, ये आज के दौर की डिमांड है। आप उसके आगे झुक गए अगर, तो अल्लाह की बात के आगे तो ना झुके, अल्लाह ताला की तो ये डिमांड नहीं थी। तो आर समझा ना, ये अल्लाह की बात मानने में आर समझी, इबादत क्या, अल्लाह की बात मान जाना, झुक जाना उसके सामने, कहना कि मैं नहीं हूं कोई चीज भी, अल्लाह तेरी बात है जो सबसे ऊपर है, मेरी बात क्या चीज हैसियत रखती है, ये है इबादत। इबादत ये है कि इंसान हर काम में हर चीज के अंदर अल्लाह ताला की तरफ देखे कि अल्लाह क्या फरमाता है इस बारे में, उसकी क्या इसके बारे में मेरे लिए रहनुमाई है, ये इबादत के इंसान देख देख के चले, ये इबादत होती है। ये थोड़ी है कि बस हमने अल्लाह को मान लिया तो बस ठीक है, हम कलमा पढ़ते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, ठीक है। नहीं, जिंदगी के, अब इसको लिख लें इबादत क्या चीज है, एक आपको मीनिंग दे देते हैं। जिंदगी के हर मैदान में अपनी सारी गाइडेंस सिर्फ अल्लाह से लेना, सब को छोड़ के सिर्फ अल्लाह से रहनुमाई लेना, क्या खाऊं, क्या पहनूं, किधर जाऊं, किधर कारोबार करूं, किससे कैसा मामला करूं, रिश्तेदारों के साथ कैसे रहूं, हमसायों के साथ कैसे रहूं, मैं एक माशरे में कैसे उठूं बैठूं, शादी कैसे हो, ब्याह कैसे हो, मर कैसे हो, गम में कैसे रहूं, खुशी में कैसे रहूं, सारी रहनुमाई जिंदगी के हर मैदान में अल्लाह से ले लेना, उसके मुताबिक चलना, यही तो इबादत है। हमने हम तो नहीं किया इबादत को समझा, तो जो तकब्बुर करेगा अनकरीब उसको अल्लाह ताला अपने पास जमा करने वाला है। और देखिए तकब्बुर करने वालों का तो अंजाम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी यानी जरा सा भी तकब्बुर आ गया तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ज्यादा ज्यादा तकब्बुर को तो छोड़े, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर आ गया। मुतकब्बिरीन यानी जो अपने आप को बड़ी चीज समझते ना, तकब्बुर क्या है इसकी डेफिनेशन भी आपको बताई थी, बतरुल हक बतरा बतरुल हक व गमतुन नास गैन मी तो, ठीक है। बतरुल हक क्या होता है, यानी हक का इनकार कर देना, हक को नहीं मानना और लोगों को हकीर समझना। हक का इनकार इंसान तभी करता है, मैं नहीं मानू, तब कहता जब मैं मुझे खुद सारा पता है, मैं क्यों मानू ये बात, मैं आपकी क्यों मानू, मुझे मुझे खुद ही सारा सब चीजों का नॉलेज है, मैं खुद ही बड़ी चीज हूं, वो रिजेक्ट कर देता है। तो जो हक का इनकार करता है, हक को ठुकरा देता है, वो अपने अकीदे को या अपने ख्यालात को इसका मतलब बेहतर समझता है तो ठुकराता है ना। अगर उसको ये लग रहा है कि ये सही बात है तो फिर तो उसको मान ले, लेकिन वो उसको सही नहीं समझता, अपनी बात को सही समझता है, तकब्बुर है उसके अंदर, लोगों को हकीर समझना, क्या चीज है लोग मेरे आगे। फहम्मल लदीना आमनू वामिलुस सालिहात, और बस वो लोग जो ईमान ले आए और साले अमल करें, फयुवफीहिम उजूरहुम, तो हम तो वो देगा उनको उनके अजर। आप देखें अजर क्या चीज होती है, अजर उजरत है, उजरत आप देते ना, उजरत क्या होती है, पेमेंट, सैलरी जैसे आप जिसको कह सकते हैं। तो वो पे आप कब देते हैं किसी को, जब कोई काम करता है, आप किसी साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपने ये मजदूरी करनी है, ये आपकी पे है, जब वो खत्म कर लेता है तो उसको उसकी पे देते हैं। आप देखें अल्लाह ताला ये जो हमारे टूटे फूटे जो भी इंसानों के काम है जितने भी कर लें वो हमारे तो खैर किसी उसमें ही नहीं आते, लेकिन कोई बड़ा ही नेक है, कोई बड़ी नेकियां भी कर ले तब भी मैंने आपको कहा वो अल्लाह का हक नहीं अदा कर सकता। जितना कुछ अल्लाह ने उसको दिया हुआ है उसको वो पूरा नहीं कर सकता, उसका शुक्र भी नहीं अदा कर सकता। कहां ये कि अल्लाह ताला उसकी जो भी मेहनत है जो भी उसकी कोशिश है उसके ऊपर फरमाता है अल्लाह उसको उसका अजर देगा। अजर अजर तो काम के बदले में दिया जाता है, उसकी टूटी फूटी कोशिश को भी अल्लाह देख के कहता है ये तुम्हारा अजर है। हालांकि कयामत के दिन तो अल्लाह ताला बस कुछ भी ना दे इंसान को ना तब भी वो लायक हम्दो सना है, तब भी वो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वी डिजर्व दिस, हमें पेमेंट मिलनी चाहिए। पेमेंट किस बात की आपको मिले? पेमेंट तो देखिए एक कोई किसी की मजदूरी करता है तो फिर उसको पेमेंट मिलती है। आपने तो ऑलरेडी इतना कुछ ले लिया हुआ उससे दुनिया में रहते हुए, इतनी जो उसने आपके ऊपर नवाजिशें की उनका उनका आपने बदला दुनिया में पा लिया हुआ है, फिर भी वो कहता है कि मैं अजर दूंगा। बस कुछ बात समझ आई कि नहीं? पेमेंट इसको कहता है, हालांकि ये तो सरासर उसकी मेहरबानी है, उसकी मेहरबानी है कि वो अता कर रहा है, पेमेंट नहीं है मेहरबानी है, लेकिन अल्लाह उसको भी पेमेंट कहता है। वही अजीद हूं मिन फदली, और सिर्फ वही नहीं देगा वो अपना फजल और भी अपने फजल से और भी ज्यादा देगा। फजल क्या होता है? ऑलवेज एक्स्ट्रा को फजल कहते हैं, एडिशनल जिसको कहते हैं जायद चीज, ठीक है। ये उसकी रहमत है कि वो उससे भी ज्यादा देगा, अजर भी देगा उससे भी ज्यादा देगा। अल्लाह अगर ये भी कह दे कि बस ठीक है तुमने अगर दुनिया में नमाजें पढ़ी ये किया हज किए मुझे माना तो मैंने भी तो तुम्हें इतना कुछ नवाजा, तुम्हें इंसान बनाया तुम्हें जिस्म दिया तुम्हें खाने पीने को दिया तुम्हें कायम रखा तो बस पूरा पूरा हो गया। अल्लाह ताला फिर भी जन्नत देता है, अल्लाह ताला फिर भी वहां की नेमतें अता फरमाएगा, ये सरासर उसका फजल है। वह अमल्लदीनस्तंकफू वस्तकबरू, और वो जिन्होंने आर समझा, किस चीज को आर समझा? अल्लाह की इबादत को, बस तकबर और तकबर किया। फयुअद्दिबुहुम अदाबन अलीमा, तो वो अजाब देगा उनको दर्दनाक अजाब। ये अल्लाह को पसंद नहीं है कि कोई इंसान अपने आप को बड़ी चीज समझे, क्योंकि तकबर सिर्फ अल्लाह के लायक है, किबरियाई सिर्फ उसकी है, उसकी चादर है, उसकी शान है। शैतान ने जो पहला जुर्म किया था वो यही तो किया था, उसने तकबर किया था, अपने आप को बड़ी चीज समझा था, अना खैरु मिन, मैं इससे बेहतर हूं। तो अल्लाह ताला को ये चीज नहीं पसंद है, एक उसके इंसान के अंदर ये आए कि मैं इससे बेहतर हूं, मैं फलाने से बेहतर हूं, नहीं। तो जो भी अल्लाह के बंदे बनने में आर महसूस करता है ना, शर्म महसूस करता है, ये अल्लाह की बात मानना इसमें तो मैं बहुत हकीर नजर आऊंगी, ये तो बहुत ही छोटी हो जाऊंगी मैं ये काम करके। जो और तकब्बुर करे अपने आप को बड़ी चीज समझे ये अल्लाह के बात मानने में, अल्लाह ताला के हाँ उसके लिए अजाब है। वला यजिदुना लहुम मिन दुनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और नहीं वो पाएंगे अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना कोई मददगार फिर वहां पे, क्योंकि वहां पे किसी के पास पावर नहीं होगी, हर कोई पावरलेस होगा। ये मालिक यौम दीन तो अल्लाह ही है, और अल्लाह ताला किसी को छोड़ दे तो फिर कौन उसका दोस्त और मददगार बनेगा? या यो नास, ए लोगो, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तहकीक आ गई तुम्हारे पास बुरहान। बुरहान क्या है? बारहा से, बुरहान को मैंने आपको जैसे बताया कि सफेद और चमकदार होना, और वो चीज जो कि ऐसी दलील हो कि जो सारे शकों को शुभात दूर कर दे, और वो क्या है? कुरआने करीम, मेर रब्बिकुम। और बाज ने कहा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, क्योंकि आपका आना भी बुरहान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरानी तो थे। तो ऐ लोगों तुम्हारे पास बुरहान आ गई तुम्हारी रब की तरफ से, वह अनजलना इलैकुम नूरम मुबीना, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए नूरे मुबीन उतार दिया। और बाज ने कहा ये कुरान है, बुरहान से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और नूरे मुबीन से मुराद कुरान करीम है। बाज ने कहा नहीं, दोनों से मुराद कुरान है, और वो भी हो सकता है, क्योंकि देखिए नूर भी कुरान है जो जहालत के अंधेरों से इंसान को निकालता है, गफलतों से इंसान को निकालता है। कुरान से इंसानों की जिंदगियां बदल जाती हैं, कहां इंसान अंधेरों में भटक रहा होता है और कहां इंसान रोशनी में आ जाता है। लेकिन ना ये सिर्फ कुरान कर सकता है। कुरान है वो जो इंसान को ऐसी रहनुमाई देता है कि जो इसकी तरफ आता है उसको समझ आती है कि किस तरह जिंदगियां बदलती हैं। ये समझने की हेडलाइट की तरह, जैसे गाड़ी की हेडलाइट्स होती है ना, तो आप इस्लाम की गाड़ी में बैठ गए और कुरान इसकी हेडलाइट्स है। हेडलाइट जलती है तो आपको सब कुछ रोशन नजर आने लगता है, और अगर हेडलाइट ही ना हो तो क्या होगा, इंसान अंधेरों में फिर टक्करें खाते फिरते हैं। जब कुरान की रोशनी आती है तो इंसान को हक और बातिल का पता चलता है, ये रोशनी है, नूर है। देखिए अंधेरा हो ना तो इंसान सांप भी रस्सी पकड़ के उठा लेता है, लाइट जलती है तो इंसान को होता है हाय ये तो सांप था। क्या फर्क हुआ, पहले अंधेरा था अब रोशनी है, यही फर्क हुआ ना। इसी तरह बहुत सारे काम हम कर रहे होते हैं ये समझ के कि ये तो सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब जिंदगी में कुरान की रोशनी जलती है ना, फिर पता चलता है ये तो कितना गलत कर रही थी मैं, सांप को रस्सी पकड़ के थामा हुआ था मैंने। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए लोगो ए इंसानियत, अब और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने बुरहान भी उतार दी और नूरे मुबीन भी उतार दी, फिर भी क्या अंधेरों में रहना चाहते हो, फिर भी क्या भटकना चाहते हो। देखिए रोशनी हर एक को पसंद होती है, कोई नहीं चाहता अंधेरे में रहना। फिर क्या बात है कि जहालत भी तो अंधेरे हैं लेकिन उनमें शौक से रहते हैं, आना ही नहीं चाहते रोशनी की तरफ। असल में रोशनी की तरफ वो नहीं आना चाहता जो सोया रहना चाहता है, गहरी नींद सोया हुआ, कहता मुझे कोई ना जगाए मैं अंधेरों में ही ठीक हूं। जो इंसान जागना चाहता है ना और देखना चाहता है सही क्या और गलत क्या है, वो जरूर नूर में आएगा। फअम्मल लदीना आमनु बिल्लाहि वातसमु बिही, बस वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर, आता सा मुंह भी और उसने उसको थाम लिया, भी ही की जमीर अब किस तरफ जा रही है, इसके दो मर्जी हो सकते हैं, एक तो ये अल्लाह की तरफ जा रही है कि अल्लाह को थाम लिया, तब इसका माना क्या होगा कि जिसने अल्लाह ताला को थाम लिया यानी इस कुरान के जरिए थाम लिया या अल्लाह पे भरोसा कर लिया, अल्लाह ताला पे भरोसा करके उसको थाम लिया, अल्लाह ताला यानी खुद बुला रहा है कि मेरे पर ईमान ले आओ और मुझे थाम लो। जैसे आप देखें एक छोटा बच्चा होता है ना, वैसे को मिसाल अल्लाह के लिए कोई भी नहीं दी जा सकती, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक छोटा बच्चा होता है ना, अब ना बाप उसकी उंगली पकड़ के रखता है, वो उंगली पकड़ के जब तक रखेगा तो बच्चा सेफ है। अगर बच्चे ने उंगली छुड़ा के कहीं सोचा कि अगर मैं बाप के साथ चलूंगा ये तो मुझे वहां नहीं जाने दे रहा और वहां नहीं, और मैं भाग के सड़क पे चला जाऊं, वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, वो उंगली छुड़ा के अगर जाता है तो क्या है, हलाकत है। आगे तेज रफ्तार गाड़ी आ रही है, बाप ने जब तक पकड़ा हुआ तो उसमें उसकी भलाई है। अल्लाह ताला कहता है वातासिमु जो होता है ना, मजबूती से पकड़ लेना, ये होता है सिर्फ पकड़ लेना नहीं होता, मजबूत चिमट जाना किसी चीज को, चिमट जाओ अल्लाह को मजबूती से थाम लो, अल्लाह का हाथ थाम लो तो वो तुम्हें गिरने नहीं देगा, और अल्लाह से दूर भागोगे तो फिर गुमराही है सिर्फ। फिरु इलल्लाह, अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात में फरमाया ना, भाग के आ जाओ अल्लाह की तरफ, सब तुम्हारे जो दुश्मन हैं इनसे भाग के आ जाओ अल्लाह की तरफ। यहां पे भी वातसिमु बिही, चिमट जाओ अल्लाह के साथ, तभी बच सकते हो। आज इतना फितना है, इसके बाद जरूरी है कि हम अल्लाह को ही थाम लें, वरना बचत नहीं है। हर तरफ से ईमान के फितने हमें गुमराहियों के अंधेरों में ले जाना चाहते हैं, तरह तरह के फितने हैं, ऐसे में कितनी जरूरत है हम अल्लाह को थाम लें, उस पर भरोसा करें, उसकी तरफ आ जाएं, उसके करीब हो जाएं। थामते तो आप उसको ही है ना जिसके करीब हो, और जिससे दूर भागे हो उसको क्या थामेंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं उस बच्चे की तरह कि करीब होने में उंगली थामने पर पता नहीं मुझे कुछ भी नहीं मिलना, दूर भाग के जाऊंगी ना तो उसमें मैं मॉडरेट कहलाऊंगी और मैं मॉडर्न कहलाऊंगी और उसमें मैं लोगों के अंदर कितनी जबरदस्त कहलाऊंगी और मेरी कितनी वाह वाह होगी, और जितनी अल्लाह के करीब आती जाऊंगी तो पता नहीं बैकवर्ड सी हो जाऊंगी। नहीं नहीं है, तुम्हें तो कहा गया तुम चिमट जाओ, मजबूती से थाम लो। तुम हल्का सा थामते हो, डरते भी हो, भागना चाहते हो, और भागने में हलाकत है। अगर पकड़ते भी है ना तो हल्का 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 हल्का, ज्यादा नहीं। उसी से डरते हैं जो आपका रहनुमा है, जो आपका हमदर्द है, जो आपका खैर ख्वाह है। वही मैं जो आपको मिसाल दे रही कि बच्चे ने बाप की उंगली थामी हुई है, वो उसको लगता है कि इसकी वजह से मेरे लिए सारी खराबी है। मजा तो वहां है, मैं भाग के जाऊं मजों में। वो तो इस उंगली को पकड़ने में उसके लिए भलाई थी। दूसरा इसका माना क्या है, वातासमु बिही, ही का मर्जे क्या है? तो उलमा कहते ही का मर्जे वही है नूरुल मुबीन, कुरान, कि इसको मजबूती से थाम लो। जैसे कि हमने पहले भी सूरह आले इमरान में पढ़ा था ना, वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, मजबूत थाम लो, चिमट जाओ इसके साथ, जुड़ जाओ इसके साथ, पेंडुलम की तरह नहीं। वो देखा आपने घड़ियों में, वो क्लॉक्स में पेंडुलम होता है ना, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, वो इसी तरह चलती है, आ जाते हैं वापस, फिर दूसरी तरफ निकल जाते हैं, फिर उधर से आते हैं, फिर इधर को निकल जाते हैं। नहीं, चिमट जाओ, ये चिमटना नहीं होता, स्विंग ना करो। हम आते भी हैं मगर पूरे भी नहीं आते। या ये लदीना मनो दुखलू फिसमी काफा, कहा पूरे के पूरे आ जाओ लोगो, इस्लाम में ईमान वालों पूरे के पूरे दाखिल हो। हम पूरे नहीं दाखिल होना चाहते, पता नहीं किस बात का हमें डर है। तो जब तुम ये कर लोगे ना, तो फसयुदखिलुहुम फी रहमतिन मिन व फदल, तो वो दाखिल करेगा तुमको, उनको जो ऐसा करेंगे, ईमान ला के चिमट जाएंगे अल्लाह के साथ या फिर कुरान के साथ, अगर जमीर ही की कुरान ने, तो वो उनको दाखिल करेगा अपनी रहमत में से और फजल में, अपनी तरफ से रहमत में दाखिल करेगा और अपने फजल में दाखिल करेगा। वह यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीम, अल्लाह की रहमत जन्नत है, उसका फजल है, और वो उनको सीधे रास्ते, सिराते मुस्तकीम क्या है, सिरात खुले रास्ते को कहते हैं, और आसान रास्ता, सीधे रास्ते की वो अल्लाह खुद रहनुमाई करेगा, अल्लाह खुद लेकर जाएगा, अल्लाह खुद चला देगा, उंगली पकड़ के चला देगा। देखो अगर कुरान को इतना मजबूत थाम लिया ना, तो अल्लाह फिर खुद आपको चला देगा सिराते मुस्तकीम पे। हम दुआ करते हैं ना, इदिना सिरातल मुस्तकीम, कैसे हम चलेंगे सिराते मुस्तकीम पे, हम कहते हैं बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम अल्लाह से चिमट जाओगे, कुरान से चिमट जाओगे, इसको छोड़ना नहीं है बस। ये नहीं कि ये कोर्स है, कोर्स फिनिश हुआ, हम तो ग्रेजुएट हो गए, सर्टिफिकेट अब हमें क्या जरूरत है, अब कुरान की कोई जरूरत नहीं, रख दो इसको साइड में, सर्टिफिकेट तो मिल ही गया, सजा लें उसको दीवारों पे, क्या देगा वो आपको, वो सर्टिफिकेट किस काम का है अगर वो आपको सिराते मुस्तकीम पे ही ना चलाए। तो ये जिंदगी भर के लिए चिमट जाना है, इसको छोड़ा फिसल गए रास्ते से। रास्ते से हट जाना कितना आसान होता है, आप एक हाईवे पे जाते हैं, कितने एग्जिट्स आते हैं ना, किसी पे भी आपने अगर टर्न ले लिया तो बस हाईवे छोड़ दी। सिराते मुस्तकीम एक हाईवे है, इसमें बहुत सारे एग्जिट्स हैं। जिस वक्त कुरान को छोड़ेंगे, बहुत चांस है कि कोई एग्जिट को ले लेंगे आप, बहुत चांस है, क्योंकि हर तरफ अट्रैक्शंस हैं। कुरान से चिमटने में इंसान के लिए फायदा है, क्योंकि वो सिराते मुस्तकीम पे तभी रह सकता है। तो अल्लाह खुद रहनुमाई करेगा ना, तुम क्यों फिक्र करते हो फिर, अल्लाह खुद चला देगा तुम्हें सिराते मुस्तकीम पे। शर्त क्या है, तुम ईमान लाओ पक्का और चिमटो इससे। यस्तफ्तूनक, अब आखिरी आयत, यानी आप देखेंगे एकदम मौजू बदल गया। आखिरी आयत विरासत की आयत, आपने 11 और 12 आयत में पढ़ा था ना विरासत के अहकाम, आखिरी आयत में भी विरासत की बात है। ये आयत सूरह निसा के नाजिल होने के बहुत अरसे बाद, पूरी सूरह निसा नाजिल हो चुकी थी, फिर ये आयत नाजिल हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है ना ये जो तरतीब है कुरान पाक की, कि कौन सी आयत कहाँ हो, कौन सी सूरत कहाँ हो, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा को बताया कि इस आयत को यहां पे रखो, इस आयत को इधर लिखो। خود سے نہیں لوگوں نے لکھ لی ہیں، یہ تو توقیفی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سورہ نساء کے آخر میں لکھو. اچھا ابھی آپ بھی سوچئے گا، ابھی میں آپ کو آیت بتاتی ہوں، آپ مجھے بتائیں گے کہ اس آیت کا کیا پیچھے سے ربط بن رہا ہے، کوئی ربط بن بھی رہا ہے یا نہیں بن رہا. اگر بن رہا ہے تو کیا بن رہا ہے، یا پھر بن ہی رہا بالکل. اچھا سوچتے جائیں، یہ آیت کس بارے میں ہے؟ کلالہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، یستفتونک، وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی شرعی حکم جاننا چاہتے ہیں آپ سے. کس کے بارے میں؟ کلالہ کے بارے میں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. کلالہ کون ہوتا ہے؟ جس کے میں نے بتایا نہ تو والدین باپ دادا یہ وہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے کوئی بچے ہیں، نہ بچوں کے بچے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے. ان امرؤن، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، یعنی وہ کلالہ ہے، حلقہ، فوت ہو جائے، لیس لہ ولد ولہ اخت، اس کے نہیں ہے کوئی ولد، کوئی بچہ نہیں، کوئی اولاد نہیں، ولہ اخت، اور لیے اس کے ہے ایک بہن، فلاح نصف ما ترک، تو اس کے لیے آدھا ہے جو اس نے چھوڑا، یعنی ترکے میں سے وراثت میں اس کے کوئی نہیں ہے، صرف ایک بہن ہے، اور اولاد تو ہے ہی نہیں، والدین بھی نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے اس کی بہن کو آدھا مل جائے گا. باقی آدھا کس کو ملے گا؟ اب آپ لوگ سوال کرتے ہیں، دیکھیں وراثت کا کورس نہیں ہے، باقی آصبا میں جائے گا. میں آصبا کہوں گی، اب آپ کہیں گے کون ہے آصبا، کیا ہے وہ، پھر یہاں پہ ہم نہیں پڑھ سکتے اتنی ڈیٹیل میں، یہ پھر آپ وراثت کا کورس یہاں تو لیں اور اس میں پڑھیں. ٹھیک ہے، وہ یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور وہ خود وارث ہوگا، ان لم یکن لہا ولد، اگر نہیں اس بہن کا کوئی بچہ، اگر بہن کا کوئی بچہ نہیں ہے اور بہن مر گئی ہے، تو یہ بھائی، ایک ہی بھائی تھا اس کا، تو وہ وارث بن گیا سارے اس کے مال کا. ٹھیک ہے، اگر بھائی مر گیا، یعنی سمجھ لیں دو بہن بھائی ہیں، ان کے نہ کوئی اگر مثال کے طور پہ کلالہ ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی کلالہ ہے، اس کی نہ بچے ہیں نہ والدین ہیں، اس کی صرف ایک بہن ہے، تو پھر وہ آدھا بہن کو مل جائے گا جب یہ فوت ہوگا. اب اگر یہ بہن فوت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا ایک ہی بھائی ہے، اس کے اس بہن کے کوئی بچے نہیں ہیں، اس کے بھی والدین تو ظاہر ہے دونوں کے ہی نہیں، تو یہ اس کے بھائی کو مل جائے گا پورا کا پورا. اب آپ نے صرف یہ آیت سمجھنی ہے، ٹھیک ہے، پورے ہم احکامات اس کے اس میں نہیں جا رہے ہیں، حالانکہ ان میں بہت ڈیپتھ ہوتی ہے، اسے آگے کتنے کتنے مسائل علماء نے نکالے ہیں، لیکن آپ اتنا ہی سمجھ لیں کافی ہے یہ آپ کے لیے. کہ اچھا اب یہ دیکھیں نا، کئی کلالہ آپ سوچتے ہوں گے کہ کلالہ تو مشکل ہی کوئی ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بہت سی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، شادی ہی نہیں ہوئی تو ظاہر ہے بچے نہیں ہیں ان کے، اور پیرنٹس بھی فوت ہو جاتے ہیں، اب وہ جابز وغیرہ کرتی ہیں، یا ان کے کوئی اور ان کو جائیداد ملی نہیں ہے ان کو ان کے نام پہ، تو وہ فوت ہوتی ہیں تو پھر کس کو ملے گا؟ تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے. فَإِن كَانَتَس نَتَيْنِ، اور اگر ایک بہن نہیں ہے اس آدمی کی، دو بہنیں ہیں، تو ان دونوں کے لیے الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو وہ ان کے لیے دو بہنوں کے لیے ٹو تھرڈ ملے گا. پہلے کیا تھا؟ ہاف ملنا تھا اگر ایک بہن ہوتی، اگر ایک سے زیادہ یعنی دو بہنیں ہیں تو پھر سلوسان ملنا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر اس کے صرف بہنیں نہیں ہیں، دو بہت سارے بہن بھائی ہیں، دو بہنیں ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، سب کو پھر ٹو تھرڈ ہی ملے گا، وہ ٹو تھرڈ سب میں ڈیوائڈ ہو جائے گا، ٹو تھرڈ نکالا جائے گا اور سب کو اندر اسی میں سے ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. اگر اس آدمی کے جو فوت ہوا ہے وہ کلالہ تھا اور اس کے بہت سارے بہن بھائی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلِذَا كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا، تو ہر مرد کو ڈبل ملے گا عورت کی نسبت، یعنی دو عورتوں کا حصہ ایک آدمی کو ملے گا. مثال کے طور پہ کسی کے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں، تو کتنے حصے کیے جائیں گے؟ چھ حصے کر لیے جائیں گے، کیونکہ جو دو بھائی ہیں ان کو چار حصے مل گئے، ٹو ایچ، اور دو بہنوں کو ایک ایک حصہ مل گیا. ٹھیک ہے، لِيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ یہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے نا، میں خود بڑا سمجھدار ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے. نہیں، اللہ کو بہتر پتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ تم گمراہ ہو جاؤ. اور آپ کو پتا ہے آدھے سے زیادہ جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ صرف یہ جائیدادوں کے ہی ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اتنی رفت آ جاتی ہے رشتے داروں میں، آپس کے اندر اتنی نفرتیں اور جھگڑے اور عدالتوں میں بھی کیسز اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اگر اللہ کے احکامات کو فالو کیا جائے تو یہ سب چیز نہ ہو، अल्लाह तुम्हारे लिए बयान करता है ताकि तुम गुमराह ना हो जाए। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, इस पे इख्तिताम है सूरत का। इस सूरत में जितनी बातें आई हैं, इस आयत में भी और इस सूरत में भी, आपको अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, आपके दिल में उनके लिए रजामंदी हो या ना हो, अल्लाह को बेहतर पता है। अल्लाह हर चीज को जानने वाला है और उसने ये अहकामात दिए हैं, तो इनमें बेहतरी ही है। आपको चाहे लगे कि आधा क्यों मिल रहा है औरत को, उसको एक पूरा क्यों मिल रहा है, या ये वाला मुझे तो ये सही नहीं लग रहा, मैं तो अपनी मर्जी से करूंगी, तो आपको ज्यादा इल्म नहीं है, अल्लाह है जो बिकुल्ली शैइन अलीम है। ठीक है, तो बिकुल्ली शैइन अलीम की बात को मान जाओ, अपने आप को ना अकले कुल समझो। अब मुझे बताएं क्या सोचा आपने कि इस आयत का क्या रिलेशनशिप है पिछली आयत के साथ? कोई बंदा ऐसा है इस क्लास में जो इस चीज का जवाब दे दे? हाँ? कि इस आयत का यहां पर क्या बन रहा है ताल्लुक, जबकि ये ऐसे लग रहा है कि ये एक अकेली ही आयत है और पीछे के साथ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। कोई जवाब नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पीछे किन की बात हो रही है? अहले किताब की, यहूद नसारा की। ठीक है, अच्छा, अब उनको सबसे बड़ा एतराज क्या था, क्यों नहीं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि बनी इसराइल में से ही कोई रसूल आए, और इस ये बनी इसराइल से रसूल नहीं है, ये बनी इस्माइल से। तो उनको बता दिया गया यहां पर कि अब तुम कलाला हो गए हो, और कलाला में भी क्या है कि अब आगे नहीं कुछ चलना, अब आगे विरासत उसके बच्चों में नहीं चलेगी, अब क्या होगा साइड्स पे चली जाती है, वो बहन भाई जो है उनको मिलती है, और यहां पर भी क्या है बनी इस्माइल में आ गई, अब तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी, अब तुम नबुव्वत के मामले में, रिसालत के मामले में कलाला हो गए। ठीक है, तो ये इसका इसका रब्त है इसके साथ। सुभान अल्लाह, कैसे कैसे उलमा ने इन आयात के ऊपर गौर व फिक्र करके नुक्ते निकाले हैं, इंसान की अकल दंग रह जाती है कि वाकई वो कलाला हो गए। अब उनको बता दिया गया कलाला हो गए, अब क्या है, अब ये नबुवत और रिसालत ये बनी इस्माइल में है, जो तुम्हारे कजन है उनके उनके अंदर चली गई है। ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। जो आखिरी आयत है इसके बारे में टेबल भी हमने बनाया हुआ है और वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। कोई बात नहीं समझ आएगी तो उस टेबल को देख के, जैसे हमने पहली आयतों का बनाया था इसी तरह आपके लिए मौजूद है, तो उसे बहुत ही इजीली आपको सारी बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तिलावत सुनते हैं।
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.